अन्न पा गया, दूसरों को सताने के बाद भी, मांगने के बाद भी जब अन्न नहीं मिलता है तब वह क्या करता है? तदा ही पितृपुत्र बहिस्मत पितृपुत्रा सकल भक्ष है। इस प्रसंग को तो अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। आज तो संडे है ना, तो समय तो काफी है, कोई बात नहीं। जब भवा कल में घूम रहे थे जंगल का कोना कोना पता लगा ले क्या क्या है, तब उससे भागे। जब दूसरे से मांगने पर भी अन्न नहीं मिलता है, मतलब पर बाधिया पर पीड़न पर पीड़ा प्रदया की जीविका, तो दूसरे को सताने के बाद भी अन्न नहीं मिलता है, काम नहीं चलता है, तब क्या करता है कि पितृपुत्र बहिष्मत पितृपुत्र अनुवा भक्ष। तो पिता और पुत्र की पितृपुत्रारंभ ही कुछ स्पद होता है, पितु पुत्रारंभ कुशादित्य मात्रा में जैसे पश्य थी तान भक्ष बाधते राज द्वारा पदाधिका नामीय पीड़ा होती है। अगर कोई गृहस्थ है और उसके पास अब बहुत अभाव हो गया, घर में धन नहीं रहा, खाने पीने का भी दुख होने लगा, तो वो क्या करता है, उसके पिता का कुछ भी किसी के पास बकाया रहता है या ऋण रहता है, तो कुछ की चटाई हो या कुछ हो, कुछ भी पर ही कहते हैं कुछ, अथवा पुत्र का धन रह गया है किसी के पास, तो कुछ भी कुछ की चटाई भी बाकी है तो उसको वो मांगते मांगने जाता है, चाहे सरकार से मुकदमा करके ले, चाहे जैसे ले, वो इसको हासिल करना चाहता है। इसका अर्थ यह है, अर्थ है समझने में दिक्कत हो रही है ना, तो क्लियर करते हैं। मान लीजिए मैं किसी का पुत्र हूं, हमें जब घर में अभाव हो गया, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, तो मैं अपना रजिस्टर ब्लैट कर देख रहा हूं कि हमारे पिताजी ने उसको एक बोझा कुश दिया था जिसका दाम वो अभी नहीं दिया, तो हम अब वसूल करने जाएंगे उसको, स्वयं नहीं देगा तो सरकार से केस कर दो, हमारा देना ही पड़ेगा और कुश का सूद बनाएगा, उसका सूद बनेगा, एक साल तक कुश ऐसे कैसे कैसे हो जाता हूं, जा करके उसके यहां कहता है चक्रवर्ती पाजी लिखते स्वर्ण भो मत पीते हो सकाशा तला च गत वर्षन एवं कुशल प्रेम गृहित, गत वर्ष तुमने हमारे पिताजी से तीन कुश लिया था या तीन बंडल कुश लिया था, जो भी सची ऐसा कारण, तो अब उसका सूद दो। कई वर्ष हाँ दत्तम अभिनय है तो दार्शनिक हेमंतिका अंतरादि दान वर्धनार्थ रीत्या अन्न संपादे क्षण मासिक प्रेरणा नीति गुणम भरे, तो नीति है कि यदि आप अन्न किसी को दे रहे हैं, किसी को अन्न दे रहे हैं उधार सूद पर, तो अन्नम सपादम क्षण मासिक छह महीने में अन्न को देना पड़ेगा सवाई पाप, मतलब सवाई ये नियम शास्त्र, आप किसी से अन्न लिए मतलब मान लीजिए एक मन अन्न लिए तो आप सवा मन देंगे, लेकिन यदि आप किसी से घास लिए हैं कुआर या कुश तो उसे दुगना देना होगा, तो एक बोझा घास लिए या कुआर तो छह महीने में उसे दुगना देना होगा, ये नियम है, तो शुद्ध उस तरह से लेना चाहिए। शास्त्र भी नियम बताता है कि शुद्ध किसको लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय को शुद्ध लेने का अधिकार नहीं, केवल वयस शुद्ध ले सकते हैं, और वह अभी वाणिज्य और गोरक्षा से यदि उनका काम हो रहा हो तब शुद्ध नहीं लेते, जब उससे काम न चल रहा हो तब शुद्ध लेंगे, आज तो पूरा संसार ही शुद्ध पर चलता है, सरकार शुद्ध ले रही है दे रही है, सब जगह सारा संसार इस इंटरेस्ट में शुद्ध, तो जाकर कहता है कि देखो तुम्हारे घर पर हमारा कुछ रह गया था उसके पुण्य नहीं हुआ है, छह महीने में दुगना होता है, तो दुगुना हो गया छह महीने में और जुट गया साल, तो फिर दुगुना का दुगुना दो। और यदि कई वर्ष का रह गया तो फिर दुगुना का दुगुना, चौगुना का चौगुना, इस तरह से पाता हमारा कुछ दो। अथवा एक अर्थ करते हैं चक्रवर्ती राज जी की, मान लीजिए किसी का खेत है और वो बिल्कुल व्यर्थ खेत है, यूजलेस है, केवल कुछ इसमें उत्पन्न होता, और किसी को दे दिए खेती करने के लिए, खेती करने के लिए दे दिए, बेचारा खेती किया, उसमें कुछ हुआ, कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब हमारा धन घटता है तो हम कहते हैं हमारे खेत में से जो फसल हुई थी उसको दो, तो कहता है उसमें हुआ क्या, केवल कुछ हुआ, तो कहता है तो कुछ का दान दो, कुछ हुआ था तो कुछ का दान दो, कुछ समझते हैं ना, तो पैती पानी या तो ग्रास। तो किसी के पास अपना कुछ भर भी पकाया रहता है उसको भी वसूल करता है, यह अर्थ है। उस तरह से हमारे बाप का बकाया रह गया है, या बाप जाकर के कहता है हमारे बेटे का बकाया रह गया है तो क्यों नहीं दो, इसको हम मुकदमा करेंगे, ये करेंगे। उसका अर्थ यह है कि अपना थोड़ा सा धन भी प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ता रहा। अच्छा, कभी कभी दवानल भी प्रवेश करता है, जिसकी व्याख्या मैं कल कर चुका था। अब अधिक गृहस्थों को चलाने की जरूरत है, अपना घर दवानल वचित आसाद गृहम दावत प्रयार्थ विधुरम असुको दड़कम शोकाग्निना दयमानो वृषम निवेदम उपच्छत। जब अपने घर में जाता है तो प्रियार्थ विधुरम, जो उसके प्रिय पदार्थ हैं वो घर में नहीं मिलते, जब नहीं मिलते हैं तो बहुत जलने लगता है, घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रियार्थ विधुर। और अंततः असुख दड़क, घर गृहस्थी से मिलता क्या है, अंत में असुख मिलता है, सुख मिलता है। तो कभी कभी निर्मला मुक्त उपगछती, केवल यह अनुभव करता है कि घर में दुख है, वैराग्य नहीं होता है, केवल इतना ही अनुभव करके रह जाता है कि घर में दुख है बस, और सुख कहां है ये नहीं जानता, इतना अनुभव होता है घर में दुख है। क्वचित काल विष्णु पढ़ा जो कुल रक्षसा बहुत प्रियतम धना से, कभी कभी राज कर्मचारी उसके प्रियतम धन को छीन लेते हैं, प्रियतम असल के प्राण को, बाहरी प्राण को, और उस समय बहुत दुखी होता है, विगत जो लक्षण है आस्था, उस समय तो ऐसा लगता है कि अब इसमें जान ही नहीं। अच्छा, कभी कभी मनोरथ में आए हुए पितृ पितामह को देखने लगता है, गंधर्व नगर का अनुभव करता है, वहां आया था कि गंधर्व नगर में प्रवेश करता देखता है और यहां प्रवेश करता है, मतलब कभी अपने पिता के साथ और पितामह के साथ बैठता है, अथवा मर गए हैं लेकिन कभी कभी याद करता है कि हमारे दादा कैसे अच्छे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, ये थे, और सुख का अनुभव करने लगे बिना मतलब, जबकि उनसे कोई संबंध नहीं रहा। तो इसको कहते हैं गंधर्व नगर में प्रवेश, इसकी व्याख्या में कर दिया। और क्वचित गृहाश्रम कर्म चोदना तो घर गिरी मारू रूप सुमार लूट वसन पासित मना कंटक सरकरा क्षेत्रम प्रविशति प्रविशन सिदत। तो कभी कभी पर्वत की चढ़ाई करता है, गृहाश्रम में है इसलिए घर गृहस्थ होने के नाते अन्य गृहस्थों के लिए या इसके लिए भी शास्त्र कुछ उपदेश करता है, असमय जप करना चाहिए, बच्चे का विवाह हो तो उसमें खर्च करना चाहिए, उसका जन्मदिन हो तो उस पर खर्च करना चाहिए, उत्सव करना चाहिए, लेकिन यह इसके लिए पर्वत की चढ़ाई के समान दुर्गर होता है, पर अब करे क्या, चढ़ता है दूसरे से ऋण लेकर के चढ़ता है वहां पर, लेकिन चढ़ने में कभी कभी स्लिप कर जाता है, गिर जाता है। तो गिरना क्या है, 20-25 हजार या 50 लाख 2 लाख कर्ज में पड़ जाता, यही है गिरना छलक का। चढ़ा काम तो किया, चढ़ा लेकिन गिर गया ऋण में, और दूसरे के देखा देखी इसको करना पड़ता। अब लोग बेसिक कर्षित मना कंटक सरकरा क्षेत्र में प्रवेश नहीं हुआ, तो कभी कभी विशेष कर्म के लिए ऋण तो लेता ही है, ऐसे प्रतिदिन के भोजन वस्त्र, टेलीफोन का बिल भरना और ये करना वो करना, ये जो है इसको सरकरा के समान है, रोज पत्थर में
जो पत्थर के टुकड़े पैर में चुभते रहता है, कांटे चुभते रहते हैं, फिर भी चलना होता है। वास्तव में कोई भी आदमी सुख से दिल नहीं भरता होगा, है कि नहीं? दिल भरते समय जरूर लगता होगा कि कांटा चुभ रहा है, पत्थर चुभ रहा है। मन करते समय तो आनंद आता है, तो बिजली जलाते समय, पंखा चलाते समय, एसी चलाते समय, लेकिन दिल भरते समय कांटा चुभने जैसा लगता है। तो ऐसा एक एक खर्च नहीं है, कांटे बहुत हैं और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो पीछे हुए हैं इस जंगल। अरे खर्चा हो, खर्चा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसको फीस दो, उसके लिए किताब लाओ, तो ये करो, फिर उसके विवाह की व्यवस्था करो, रोज खर्चा, रोज कुछ न कुछ व्यय, इसको कहते हैं पत्थर चुभना पैर में। और चलना ही पड़ता है, रोज चलना है, लेकिन ऐसे रास्ते पर चल रहा है जिसमें कंटक और सरकरा क्षेत्र, हर गृहस्थी ऐसा है कि इसमें रोज सोचना पड़ता है, उधर करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। कई बार मैं लोगों को देखा हूं ऐसे बैठे हैं और डाकिया बिल दे गया तो उस बिल को लेकर के ऐसे करते तो बहुत भारी कांटा चुभ गया। उपाय करते हैं तो गलत गलत दे दिया है, कुछ इसको डिमिस करना चाहिए, ये वो ये ऐसे करो ऐसे। भोजन के लिए रोज चाहिए, जब दुकान से बिल आ रहा है, उधर सिगरेट अभी पीने वालों का पान गुमटी से आ रहा है बिल, इधर बिल हो बिल, कपड़ा धोने का, घूमने का, जाने का, उसको लोग व्यसित, लोग व्यसन कर्षित बनाता। चाहे वो पति व्यक्ति भी हो लेकिन उसको भी एक दुख का अनुभव होता है। 10 रुपया अभी उसका लगता है, तब भी उसको लगता है कि कांटा चुभा है, चाहता नहीं है कि हमारा पैसा खर्च है ना। और कहीं अभी 10-20 लाख खर्च हो गया तब तो त्रिशूल ही धस गया पेट में, कहीं अब तो मिलेगा दो चार घंटा, ये क्या हुआ, ये कैसे होगा। रोज रोज चलना है गृहस्थों को इस पक्ष से, फिर भी भूल करके सुख मान लेता, फिर भी गंधर्व नगर देखता, फिर भी शरीर को नित्य मान लेता। अब कोई है गृहस्थ इसमें ऐसा जिसे पैसा खर्च करने में दुख नहीं होता होगा? कोई ऐसा है नहीं। अवश्य धर्म के काम में खर्च करने में सुख होता है, ऐसे लोग हैं जिनको कोई कहा नहीं और अपने आप कई वर्षों से करते रहे, भगवान की सेवा में लगाने पर जरूर सुख अनुभव होता है, लेकिन और काम में लगाने में तो दुख होता है। यह हो सकता है सबसे बड़ा आनंद आता होगा अपनी पत्नी में खर्च करने, वो तो भगवान से भी ज्यादा आनंद मिलता है। हम वृंदावन में देखे हैं विदेश से भक्त लोग आते हैं तो भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, उधर से तो डॉलर लेकर के आते हैं, एक डॉलर का यहाँ 30 रुपया 35 रुपया मिलता है, तो 100 रुपया रक्षा में डाले तो बहुत हो गया, लेकिन अपनी पत्नी को रक्षा पर बैठा कर लोही बाजार में जाकर कई हजार का गहना बनवाते स्त्री को भी एकदम देखी हुई बात में कहा। स्त्री के लिए खर्च करने में आनंद है, और स्त्री यदि रात में कह दे कि आप जब मरेंगे तो मैं भी सती हो जाऊंगी, तब तो अपना सब कुछ दे दो। सूरदास जी ने लिखा है अपने पद में कि हाँ तेरे संगहीन जराऊंगी तुआ धूप धन खाए। स्त्री कहते हैं कि आप जब मरेंगे तो मैं आपके साथ ही मर जाऊंगी, मैं जीवित नहीं रहूं। अवश्य कोई प्रतिवर्ता स्त्री ही ऐसा करे, अरे वो चलो नाम चलो, लेकिन इस तरह से पूरा धूप धन खाओ तो धूर्तता करके सारा धन खा सकती। हम समझते हैं कि हस्तों को हमारा ये वाक्य तो अप्रिय लगता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मैं भी दूसरे का वाक्य कह रहा हिंदी भाषा के बहुत बड़े भक्त कवि हो गए पुष्टि मार्ग शिवदास, तो वो इस तरह की बात कहते हैं। तो शास्त्र भी यही बात कहता है, जो भी हो भगवान में धन खर्च करने में आनंद का अनुभव करना चाहिए। और यह बात जरूर है कि स्त्री और पुत्र को भी जथा जो खर्च करने में आनंद का अनुभव करना चाहिए। ऐसा कृपण नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चा भी मांगे तब भी न दे, स्त्री मांग रही है तब भी न दे। अब कोई तो जीवन प्रिय मांग रहा हो तो जीवित ही मरा, जब बच्चा कोई नहीं देगा स्त्री को भी नहीं देगा तो उसके जीने से फायदा क्या, तो मरा हुआ। लेकिन ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जबकि मनुष्य धन खर्च करने में मरने लगता है, तो कांटा बिछा दिया जाए और शर्करा पत्थर के छोटे छोटे तीखे तीखे कण और चलने को कहा जाए तो चलना चाहेगा? नहीं, चलना नहीं चाहता, खर्च करना नहीं चाहता है लेकिन होता रहता। ये है कंटकों पर चलना। कदाचित भग्नमान दृष्ट्र दुर्जन दन सुकर अलग निद्रा क्षण व्यथित हो गया ना अनुच्छीय मान विज्ञान अंधकूप अंधक पतक। कभी कभी इस जगत में कोई व्यक्ति इसका अपमान कर देते हैं, इसके अभिमान के दांत को तोड़ देते हैं। भग्नमान दृष्ट, ये जो अभिमान है कि मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बड़ा हूं, तो यह दांत जैसा है लेकिन कभी कभी इसका दांत तोड़ दिया जाता है। दुनिया एक से आगे है कि नहीं? कहीं आप गए, मान लीजिए आप किसी संस्थान में बहुत बड़े पद पर हैं, महान थाली हैं, लेकिन ट्रेन में जा रहे हैं तो कोई बैठने के लिए भी नहीं कहता है कि नहीं? कोई पहचाने जा भी नहीं, और खड़ा वो हुए किसी के पास जब वो यहां जगह नहीं उसी तरह का तो दांत टूटा कि नहीं? अब तो आदमी याद करेगा कि अरे मैं ऐसा हूं, हमारे साथ सैकड़ों चेला चलते हैं, हमारे शिष्य चलते हैं, उधर व्यास पूजा में क्या क्या करते हैं और आज बताओ हमको एक आदमी पूछने वाला नहीं है। दांत टूटा कि नहीं? और दांत टूटता रहेगा, संसार में सब जगह मान नहीं मिलेगा। जो कहते हैं कदाचित भक्न मान कनिष्ठ, कभी कभी इसका मान रूपित दांत टूटता है, अत्यथा का अनुभव करता है। यदि एयरपोर्ट पर उतरे बड़ा आदमी एयरपोर्ट पर किसी प्लेन से और उसको लेने के लिए कोई चेला न जाए, क्या हो गया, दांत टूट गया, कभी दस दस कार जाती है, कभी एक भी नहीं पड़े, तो टूटा था तब सोचता हुआ आदमी आएगा दांत की चिकित्सा करने की। अब बैठना है सुस्ते क्यों नहीं गए, तुमको पता नहीं था, ये नहीं था, क्या मान चाहते, और ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता। एक बार की बात है, कौन भारत को स्वतंत्र करने में गोखले जी, उनका क्या नाम है, हाँ गोखले जी, तो कह रेलवे स्टेशन से उतरे, उनके साथ एक कॉलेज का लड़का उतर, उसके पास एक छोटा सा बैग, तो वो कहता है पुली 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 था वो बरसात का फिल्म था, सब लोग घर चले गए थे, रात में ट्रेन रुकी थी, पुली पुली तब तो गोखले जी आए जो भारत प्रसिद्ध है नेता, तो वो उसको झोला को उठा दो, कह चलिए कहाँ चलना है, वो सुख चलने लगा। बाद में उस सोचा कि इनको कुछ पैसा दू, आदमी धोया बिल्कुल साधारण कपड़ा पहने थे, धोती पहने थे, सोचा कुछ पैसा था, कितना आपका हुआ, तो कुछ नहीं, नहीं नहीं आप सोचिए आप, तब तक कुछ लोगों ने आकर के इनको प्रणाम किया, वो खड़े थे, वो व्यक्ति पूछा उनका क्या नाम है, क्या नाम है, तो इन लोगों ने कहा अरे ये तो गोखले जी पाप चरण में गिर कर क्षमा मांगने लगाते, मैं आपसे ही काम कराया, क्षमा कीजिए कीजिए, तो बताओ इतना बड़ा है आदमी, उसके मन में ये अहंकार नहीं है कि मैं बड़ा हूं, तो अपने देश के पढ़े लिखे लड़के का पैर उठा दे। हमने सुना है कि महात्मा गांधी ट्रेन में चलते हुए व्यक्ति ने जब थूक दिया था तो उसको पोछ दिए थे कागज जो, इस तरह से व्यक्ति को अमानी होनी चाहिए, दूसरों को मान देना चाहिए। लेकिन नाम की भावना रखेंगे तो दांत को क्षण क्षण में टूटेंगे, नाम के ध्वंस दांत टूटेंगे। हमें एक जगह गया कई आदमी के साथ, हमारे कुछ शिष्य भी थे, और एक व्यक्ति मिला और हमको कहता है तुम लोग जो कपड़छोल हो गए हो, ऐसे कहा तो कपड़छोल हो गए हो, एक डंडा मारा जाए तो बस वही चीत हो जाओ। और हमारे शिष्य लोग थे उनको बड़ा दुख लगा, मैं तो हंस रहा था, कुछ दुख हमें भी लगा, लेकिन फिर भी महाराजा रहोगा नहीं हो गया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैं चुप जाप रहा। और वो लोग कहने लगे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो बाद में उसे पता चला, हमारे गांव के पास की बात हुई, तो गांव उसके गांव में पता चला कि अरे बड़ा साधु है, मतलब इस क्षेत्र का यही प्रचारक है, उचाड़ में गिरने लगा। महाराज उसे बहुत गलती हो गई, ये हो गया, मतलब कोई गलती नहीं हुई, कौन सी बड़ी गलती। मैं यह कह रहा हूं कि कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां माला पहनाई जाती है, जय बोला जाता है, सैकड़ों आदि प्रणाम करते हैं, और कहीं कहीं कपड़ छोड़ कर डंडा मारने की बात करी। हमने सूरज में पटना में बोला था जन्माष्टमी पर, लालू प्रसाद वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वही बैठे थे कथा में, तो मैं घूमे रातों में भाई की व्याख्या कर रहा था, जैसी बातें कहा कि सब कुछ भगवान दिए हैं, मनुष्य कुछ लेकर के नहीं आता है, उसको भगवान का भजन करना चाहिए। तुम सब लोग यहां आकर के बैठे हो, लेकिन सांस लेने के लिए हवा लेकर आए थे, और चीफ मिनिस्टर उसमें बैठे थे, तो दोनों हवा लेकर आए थे, बैठने के लिए धरती लेकर आए थे, पानी पीने के लिए कटोरी भी लेकर आए थे, कृष्ण सब दे रहे हैं, इसलिए कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के लिए एक सुंदर सेंटर बनाओ इस पटना में, पता नहीं सरकार रहेगी या चली जाएगी, मैंने भी कहा तो यश लेना चाहिए सरकार। और बहुत ताली बजा रहे थे दूसरे को, इससे चीफ मिनिस्टर का दल जो था खौफ हो गया, बिगड़ गया हम पर, वो सामने नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक घंटा कल बात करूंगा चीफ मिनिस्टर का। तो दूसरे दिन उनको दिल्ली आना था, तो पटना एयरपोर्ट पर जा रहे थे, तब तक भूतपूर्व में चीफ मिनिस्टर मिले, जो हम तो जानते थे, और उनसे मैं बैठा था, मिला था अच्छी तरह। तो पूछे भोजपुरी में जगन्नाथ मिश्रा, कहा हो लालू भाई, सुना है कि रात में कौन साधु से भिड़ंत हो गए रहे। क्या लालू भाई, मैंने सुना कि आपको रात में जन्माष्टमी की रात में किसी साधु से भिड़ंत हो गए थे। हाँ पता न कहां से कपड़ छोड़ आए रहा, हमार तो ये मन करत रहे कि वही घर उठा पटक लगा दी। और अखबार वाले इसको छापे थे, दोनों चीफ मिनिस्टर की वार्तालाप को छापे थे उसको। पता नहीं कहां से आया था, ऐसे बोल रहा था, यदि मैं कृष्ण कथा कह रहा था, मेरा आशय किसी का अपमान करने का था नहीं, लेकिन कहने का आशय मेरा यह है कि एक चीफ मिनिस्टर आकर प्रणाम कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, आदर से बोल रहे हैं, दूसरे चीफ मिनिस्टर अगर कपड़ छोड़ कर तो मेरे कहीं है, कोई उसे अपमान नहीं हुआ, लेकिन जब मान की भावना रहेगी तो मान का दांत तो पग पग में टूटेगा, है ना। इसलिए अपने को बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्षण क्षण में अपमान मिलेगा, इसका अर्थ है। और अभी किसके द्वारा अपमान मिलेगा, किसी गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा नहीं, दुर्जन दंड स्वीकार, दुर्जनों के द्वारा अपमान मिलेगा इस संसार में, जो स्वयं दुर्जन है लेकिन बहुत अपमान करे, तुम ऐसे हो, ये हो, वो हो, ऐसे हो, ऐसे ऐसे, और अपमान भी अपने स्टेटस के अनुसार होता, स्टेटस के अनुसार होता है अपमान, जो जैसा होता है उसका वैसा अपमान। जैसे हमको कोई कह दे कि ये प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार नहीं बोल रहे तो हमारे लिए बहुत भारी अपमान आस्पद ये बहुत बड़ा अपमान होगा। इसी तरह का अपमान तो होगा ही, कहने वाले कहते रहेंगे, परोक्ष में जो झिल्ली है झिल वो बोलते रहेंगे और सामने भी कभी कभी उल्ली लोग कहेंगे वो कर सामने कुछ कह देंगे कि तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो, ये नहीं अच्छा कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, ऐसा होगा। एक संसार का स्वरूप होगा, प्राइम मिनिस्टर का भी अपमान होता है, राजा का अपमान होता है, भगवान कृष्ण का अपमान हुआ, राष्ट्रीय सभा में इस विश्व का सम्राट जो निश्चित महाराज जी की पूजा कर रहे थे और सुष्पा खड़ा होकर लगा कहने की गाय चराने वाले की आगे पूजा की गए उतने ब्रह्मर्षि राजर्षि भरे पड़े हैं, युधिष्ठिर का दिमाग नष्ट हो गया, ये आप सब लोगों को बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है उस गौड़े की पूजा करके, इसको पूजा करना ही था तो अपने एकांत घर में पूजा होता, सबके सामने क्यों कर रहा है, किस कारण से कृष्ण की पूजा कर रहा है, किस कारण से, उसका आचरण आपको जानते नहीं है, गांव चलाने वाला पूजा गया और राज करने वाले लोग यहां तमाशा देखे कई तरह की बात बोला, कई तरह यहां तक कह दिया कि हमारे साथ रुक्मिणी का विवाह निश्चित हुआ था और यह जाकर के उसका अपहरण कर लाया, ये दुराचारी दूसरे की औरत को चुरा करके लाया और उसकी आगे पूजा हो रही है, इसको तो यहां पीटना चाहिए, जूता से स्वागत करना चाहिए और इसकी अग्र पूजा हो रही है, बहुत बोला फिर भी भगवान चुपचाप। इस विश्व के समस्त ऋषि मुनि आए थे, नारद जी, भगवान विद्यास थे, वशिष्ठ मुनि सभी लोग आए थे, राजर्षि सब आए थे और भगवान के परम समर्थ भक्त लोग ज्यादा लोग सब थे वहां, चाहते तो शिशुपाल को एक मिनट में मार सकते थे लेकिन फिर भी भगवान के इशारे से सब भगवान सब और इतना ही नहीं, एक बार उनको चोरी का भी कलंक लगा और हत्या का, वो कहता है कि शत्रुजीत को मिल गया था भगवान सूर्य ने लेकर के आया तो भगवान कृष्ण ने इससे कह दिया कि देखो मरी बहुत मूल्यवान है तो 85 किलो सोना रोज उगलता था मेरे जहां भी रहता था। भगवान ने सोचा कि राजा के पास रहना चाहिए नहीं तो कोई भी इसकी हत्या करके ले लेगा, तो बहुत बड़ा धन है, तो उनका अगले उग्रसेन जी को धन दे दो राजकोष में और जो सोना उत्पन्न है वो लिया करो लेकिन इसको बैंक में रख दो, रख दो। तो वो क्या कहा, हाँ हाँ बहुत सिखा रहा है, मैं समझ रहा हूँ, सत्राजित कहा दिखाओ मत, नहीं दिया, भगवान की आज्ञा पालन नहीं किया। तो उस मणि को उसका भाई प्रसन्न जी अपने कंठ में धारण करके, जो जिसकी पूजा होनी चाहिए थी उसको कंठ में धारण करके और शिकार खेलने चला गया, हत्या कर एक सिंह है उसको मार दिया, घोड़े को और उसको और सिंह को फिर वृक्ष राज हनुमान मार करके ले गए और इधर हल्ला हुआ, प्रसन्न कहां गया, प्रसन्न कहां गया, कौन अपहरण किया, लपटा हो गया, क्या हुआ। तो ये एक छोटे से मीटिंग करके शत्रुजीत कहा कि सुनो, मैं देखा नहीं हूं लेकिन मैं पूरा जानता हूं कौन हमारे भाई को मारा है, कृष्ण का काम है, कृष्ण हमसे कहे थे कि मारो देव और राजा पर, मैं नहीं दिया, इसी पर रंग होकर को हमारे भाई को मरवाया और मणि चुराया हुआ होता है, मणि कहां गए थे और कौन ले गया, लेकिन भगवान पर कलंक लगा। तो यह संसार ऐसा है कि यहां दुर्जन दंड से दुर्जन रूपी सर्प बसते रहेंगे क्षण क्षण, तो बसे दुर्जनों को सर्प कहा गया, बल्कि दुर्जन को बस में कर लेना आसान है लेकिन दुर्जन को समझाना आसान नहीं है, वो बस में नहीं हो सकता। चाहे पंडित कहते हैं कि माछी के सिर पर विष रहता है, सांप के दांत में विष रहता है, बिच्छू के पूंछ में विष रहता है लेकिन दुर्जन के सभी अंगों में विष रहता है, तो बोलेगा किस जैसा, देखेगा किस जैसा, चलेगा किस जैसा, वो दुर्जन संसार में भरे पड़े। वो कहते हैं कि
देखो सांप को भी वश में किया जाता है लेकिन दुर्जन को नहीं किया जा सकता। इतने कुशलने सांप शेष नाग हैं लेकिन भगवान कृष्ण उनको सहन करते। सांप भी मित्र हो गए लेकिन दुष्ट दुर्योधन उनको समझाने से नहीं मारे। दुर्जन को वश में नहीं कर सके, दुर्योधन को वश में नहीं कर सके लेकिन शेष नाग जैसे भयानक सर्प पर सो रहा है वो भी मित्र हो गया लेकिन दुर्जन नहीं हो सकता। तो दुर्जन इस संसार में भय कहे हैं तो ये कभी कभी घूमते रहते हैं तो इस समय मनुष्य विवेकहीन हो जाता है, बदला लेने की सोचने लगता है। सहना चाहिए, बदला उन्हें लेना चाहिए। अच्छा इसके बाद बता रहे हैं कभी कभी यह तुच्छ वस्तु को खोजता है। काम मधुर लवान, काम मधुर लवान, काम मधुर का अर्थ है उस संसार में जो स्त्री संग है वास्तव में वह मधुर है लेकिन लव मात्र है,